الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عزوجل اللہ پاک کی رحمت سے آج ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے,
آمین.
ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. آئیے ناظرین, پہلے تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں آج کا سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں سکون قائم ہو جائے, امن ہو جائے, گھر والے پیار و محبت کے ساتھ رہیں, آپس کے تعلقات اچھے رہیں, تو گھر میں امن قائم ہو جائے, دشمنیاں ختم ہو جائیں, محبتیں آپس میں ہو جائیں, گھر میں اتفاق ہو جائے. اس کے لیے ایک بہترین روحانی علاج آج کے روحانی علاج میں سماعت کرتے ہیں. ایک بہت ہی پیاری قرآن پاک کی دعا ہے, ہر نماز کے بعد یہ دعا آپ پڑھنے کی عادت بنا لیجئے, انشاءاللہ عزوجل گھر امن کا گہوارہ بنے گا اور بچے سنتوں کے پابند ہو جائیں گے. دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ دعا ہر نماز کے بعد کیجئے, انشاءاللہ عزوجل گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا. دعا پھر سماعت فرما لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ناظرین, یہ تھا گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے. اگر چاہتے ہیں تو یہ آیت قرآنی ہے, تو یہ اپنے معمولات میں شامل کیجئے گا. آپ دیکھیں انشاءاللہ الکریم گھر والے, اہل و عیال, بچے سب انشاءاللہ الکریم سنتوں کے پابند بنیں گے, گھر میں محبت و بھرا ماحول قائم.
سلسلہ ہمارا آگے بڑھے. یہ جو قرآنی دعا ہم نے سنی, گھر امن کا گہوارہ بنے, اسی طرح بہت سارے اور بھی وظائف پڑھنے کے لیے سنتے ہیں, اس کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں, تو بعض لوگوں کے میسیجز بھی, کالز کے ذریعے سے بھی اور بالمشافہ بھی کہ ہم نے یہ عمل کیا, وظیفہ پڑھا, لیکن ابھی تک ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا. تو یہ ایک سوال ہے سب ناظرین کی طرف سے ہی چلے آپ سے کیا کہ اس میں کیا سبب ہو سکتا ہے کہ یعنی عمل بھی کر رہے ہیں, وظیفہ بھی کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں اس مقصد کو نہیں پا رہے, تو یہ سوچتے کہ میرے مجھے وہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی.
یہ کامن سوال ہے, ناظرین کی طرف سے بھی آتا ہے, بہت کافی سننے کو بھی ملتا ہے یہ سوال. دیکھیں, اس کے دو جوابات ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ چلے آپ جو وظیفہ پڑھ رہے ہیں, جو دعا آپ کر رہے ہیں, جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ مقصد پورا نہ ہو, وہ آپ کی مراد پوری نہ ہو, لیکن اس وظیفے کی برکت سے دوسری جو جائز مرادیں پوری ہو رہی ہیں, دوسرے جو آپ کے جائز کام بنتے ہوئے چلے جا رہے ہیں, تو اس وظیفے کی برکت ہو سکتی ہے نا. اب جیسے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں, بعض اوقات ہمیں دعائیں قبول ہی قبول ہیں الحمد للہ عزوجل, ہم جس چیز کا سوال کر رہے ہوتے ہیں وہ چیز نہیں مل پاتی, ہو سکتا ہے کہ وہ چیز ہمارے حق میں بہتر نہ ہو, اس کے نعم البدل کوئی دوسری چیز ہمیں نصیب ہو جاتی.
شک بشک.
اچھا, پھر دوسری بات یہ کہ دیکھیں, جس طرح جڑی بوٹیوں اور تمام دواؤں کی تاثیر اسی وقت ظاہر ہوگی جب کہ اسے ان کی ترکیب سے ہی استعمال کیے جائیں, بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق استعمال کیے جائیں, تو اسی طرح روحانی علاج میں بھی یہی ہوتا ہے, اوراد و وظائف میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جب ان کے لوازمات پورے کیے جائیں. دیکھیں, عملیات اور تعویلات میں بھی یہ شرائط ہے کہ جب ان کی तरकीबें पूरी की जाएं, इनके लवाजमात पूरे किए जाएं, इनके शराइत का ख्याल रखा जाए, तब जाकर इनकी तासीरात जाहिर होती हैं, अमलियात की तासीरात जाहिर होती हैं।
इन अमलियात की जो कोई शराइत है, कोई
बिल्कुल
भारी भरकम
शराइत
है?
है इनके रूहानी इलाज की, तावीदात की और आदो वजाइफ के असर करने ना करने की भी शराइत हैं, यानी ये शराइत पाई जाएंगी तो औरादो वजाइफ की तासीर जाहिर होगी। जैसे अकल हलाल है, यानी हलाल खाना, हलाल कमाना, सिदके मकाल है, सच बोलना। अब कोई हराम खाता रहे, हराम कमाता रहे, खा भी रहा है, खिला भी रहा है, अब कैसे उसकी दुआएं कबूल होंगी, कैसे वजाइफ की तासीर जाहिर होंगी। इसी तरह तकवा इख्तियार करे, फराइज वाजिबात की पाबंदी करे और जो वजाइफ बताए गए उनको बताए गए तरीके कार के मुताबिक अमल करे। इसी तरह जो भी वजीफा पढ़े वो हुजूर कल्ब के साथ पढ़े, यकीन कामल के साथ, एतिकाद मजबूत हो, यकीन कामिल हो, और ऐसा मजबूत एतिकाद और यकीन होना चाहिए कि जो मैं वजीफा पढ़ रहा हूँ इंशाअल्लाह करीम फायदा हासिल होगा ही होगा। अच्छा,
जी
अगर अच्छा बाद अवकात क्या होता है कि एतिकाद मजबूत नहीं होता, चलो पढ़ लेते हैं, बताया था अभी मदनी चैनल पर बताया गया था या किसी ने
पढ़
बताया
लेते हैं,
था
देखते हैं
वजीफा,
इसका क्या नतीजा
हाँ
होता
फायदा होता है नहीं होता, पढ़ के देख लेते हैं। अगर ये तजब्दुब का शिकार रहे हम, इसे कैसे फवाइद हासिल। और फिर देखें ये भी होता है कि वजाइफ भी पढ़े जा रहे होते हैं, फराइज वाजिबात की पाबंदी भी होती है, और हो सकता है कि फिर भी मसाइल का शिकार हो, फिर भी मसाइब में मुबतला हो। अब क्या शैतान ये वसवसा डालने की कोशिश करेगा, यार आप तो नमाज भी पढ़ते हैं, आप तो किसी को तकलीफ भी नहीं पहुंचाते, आप तो किसी का बुरा भी नहीं सोचते, अच्छा आप तो ये वजाइफ भी पढ़ रहे हैं, आप तो दुआएं भी करते हैं, आप तो हर महीने माशाल्लाह पाबंदी से सदका भी निकालते हैं, फिर भी आपके साथ ये मसाइल, फिर भी परेशानियां। तो ये शैतानी वसवसों में भी ना आए, अल्लाह पाक की रजा पर राजी रहें। हर काम में, हर चीज में अल्लाह पाक की हिकमत और मसलहत पोशीदा होती है, राजी बर रजा रहे, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, ये हम अपना जहन बना लें और इंशाअल्लाहुल करीम कभी हम तदब्दुब का शिकार नहीं होंगे इंशाअल्लाहुल करीम। और
जी।
अल्लाह की रहमत से फिर इसके फवाइद भी हमें ऐसे नजर आएंगे कि मदीना मदीना हो जाएगा इंशाअल्लाह। आइए नाज़रीन शामिल करते हैं आपकी कॉल्स, देखते हैं कि नाज़रीन क्या रूहानी इलाज जानना चाह रहे हैं और अपने किन मामलों के बारे में इस्तिखारे करवाना चाह रहे हैं।
मेरा नाम रिजवान है और मेरी वालदा का नाम राबिया है।
जी रिजवान,
हमारी शादी को 2.5 साल हो गए लेकिन औलाद नहीं हुई। और इसके अलावा हमारे 4 भाई हैं, उनकी भी औलाद नहीं है। घर में मसला है क्या? मतलब आप इससे खड़ा करके देख ले। मेरी वाइफ का नाम मदिया, उनकी वो उनकी वालदा का नाम शहनाज है।
सही है, आपका तो इस्तिखारा हम करवाते हैं अभी, और आपका आपकी सोजा का मरीहा नाम आपने बताया था, और जो 4 भाई हैं उनके साथ भी इस तरह की प्रॉब्लम है, अब उनका तो इस्तिखारा नहीं किया जाएगा, नाम नहीं बताया आपने चारों भाइयों का। बहरहाल उनके लिए वजीफा अभी आपको इंशाअल्लाह करीम बता दें। जी नेक्स्ट कॉल।
बल का नाम महमूद, वालदा का नाम जहिया बीबी। वो कह रहा है हमारे कारोबार में जिनसे हम माल लेते हैं वो कह रहे थे पहले कि बिल क्लियर करो फिर माल देगी, अब हमने बिल क्लियर कर दी, अब वो कह रहे हैं कल है परसों है, मेरा भाई बहुत परेशान है, हमें कोई रूहानी इलाज इस शिकारा करके बता दीजिए।
महमूद नाम बताया इन्होंने, कारोबारी मसला है। इन्होंने कहा था कि जहाँ से माल उठाते हैं ना, अब वो पार्टी कह रही है कि पहले भाई पहले का बिल क्लियर करके दें फिर जाके हम तुम्हें माल देंगे। अच्छा, अब बिल भी इन्होंने क्लियर कर दिया है, अब वो माल नहीं दे रहे। इस्तिखारा और रूहानी इलाज इस हवाले से बताइए। जी नेक्स्ट कॉल।
साइदा परवीन, उनकी अम्मी का नाम फुगड़ा बीबी है। वो काफी अरसे से बीमार है, ये पूरा जिस्म में छिकाव रहता है ना, तो उनका डॉक्टर इलाज भी कराया है तो नहीं हो रहा। इस्तखाना तो या रूहानी इलाज जो है वो तो बताए।
जी इस्तखारा करवाते हैं इंशाअल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल।
सर मेरा नाम मुनव्वर है, मेरी वालदा का नाम परवीन अख्तर है, मैं सियालकोट से बात कर रहा हूँ। जी मैंने इस्तखारा करवाना है, मेरे कारोबार का मसला बना हुआ है।
सही जी मुनव्वर भाई, अभी इंशाअल्लाह करीम इस्तखारा करवाते हैं आपका। जी नेक्स्ट कॉल।
काम की बड़ी परेशानी है और काम नहीं, मेरे साथ तो बच्चों की शादी नहीं हो रही।
सही है, काम का मसला है, परेशानी है और शादी में भी रुकावटें हैं। अल्लाह पाक आसानी फरमाए, इसका रूहानी इलाज इंशाअल्लाह करीम मैं अर्ज करता हूँ। नाज़रीन इस्तिखारे आपके किए जा रहे हैं, इस्तिखारे हो जाएंगे तो फिर इस्तिखारों के जवाबात भी आपको बताएंगे। अच्छा, पहले इनका मैं रूहानी इलाज अर्ज कर देता हूँ। ये हमारे इस्लामी भाई थे, काम की परेशानी के हवाले से और आपने अपने रिश्तों में रुकावट के हवाले से भी कहा। देखिए 100 मरतबा या कहारू, रोजाना 100 मरतबा पढ़ने का मामूल बनाएं, अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात को आसानियों में तब्दील फरमा दे। काम की जो भी परेशानी है, जो भी मसला है, इंशाअल्लाह उनकरीम हल हो जाएगा। अच्छा, वजीफा भी पढ़ना है और कोशिश ये कामयाबी की कुंजी है, कोशिश भी आपने अपनी तेज कर देनी। अच्छा, दूसरी बात ये कि शादी के हवाले से आपने कहा कि रिश्तों में रुकावटें हैं, तो नमाज फजर के बाद 312 मरतबा या जल जलाली वल इकराम यह आपने पढ़ना है। मैसेजेस में नाज़रीन के काफी सारे हैं, ये कहते हैं कि दिमाग में वसवसे बहुत आते हैं, इसका कोई रूहानी इलाज बता दीजिए। देखिए, अगर किसी को वसवसे तंग करते हो तो हर नमाज के बाद एक मरतबा सूरतुन्नास ये पढ़ लिया करें, वसवसे दूर हो जाएंगे। ये नवाज भाई हैं, इन्होंने दूसरा मैसेज ये किया है कि खारिश का भी रूहानी इलाज बता दीजिए। कुरान पाक की ये आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फकसवना अलइज़ाम अलहमा ثم انشانا خلقنا آخر فتبارك الله احسن الخالقين। ये सूरत المؤمنون की आयत नंबर 14 है। खारिश का मरीज खुद पढ़कर पानी पे दम करके पिए और जिस्म के जिस हिस्से पर खारिश है ना, तो उस मकाम पर दम कर लें, तो इंशाअल्लाह करीम ये खारिश का मर्ज जाता रहेगा। अच्छा, मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया गया है, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, मुझे कोई ऐसा वजीफा बताइए कि जिससे मैं बेगुनाह साबित हो जाऊं। अल्लाह पाक हम सब की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए। अगर किसी पर कोई इस तरह का इल्जाम लगा दे और बेकसूर हो, तो देखें आपने ये वजीफा पढ़ना है 654 मरतबा आप पढ़ेंगे, या जल जलाली वल इकराम, 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 ये पढ़ें इंशा अल्लाहुल करीम। अल्लाह की रहमत से आप पर ये जो इल्जाम लगाया गया है इसे आप बरी हो जाए। अच्छा, मेरी जॉब का मसला है और कोई वजीफा बताइए मुझे मुलाजमत मिल जाए, तो इसके लिए आपने औकात मकरूहा के अलावा 2 रकात नमाज नफल पढ़नी है। 2 रकात नमाज नफल पढ़ें और 2 रकात नमाज नफल अदा करने के बाद आप या लतीफ़ 182 मरतबा 182 टाइम्स 182 मरतबा या लतीफ़ू या लतीफ़ू या लतीफ़ू अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़ें। पढ़कर फिर आप अल्लाह पाक की बारगाह में गिड़गिड़ा कर हुजूर दिल के साथ यकीन कामिल के साथ दुआ कीजिए। चंद दिनों तक यह अमल कीजिएगा, इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह की रहमत से रोजगार के असबाब बन जाएंगे, आपकी मुलाजमत आपको मिल जाएगी और जॉब का कोई ना कोई इंशाअल्लाहुल करीम जरिया बन जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। आइए नाज़रीन शामिल करते हैं इस्तिखारों के जवाबात, इस्तिखारों के हवाले से भी नाज़रीन के कुछ कॉल्स थे। जी, इरशाद फरमाइए।
सबसे पहले रिजवान भाई की कॉल थी जिन्होंने औलाद के हवाले से कहा कि 2.5 साल हो गए शादी को, औलाद नहीं हुई। रिजवान भाई, आपका और आपकी जोजा का इनका इस्तिखारा किया गया, तो इसमें कोई भी अमलियात या बंदिश वगैरह का मामला नहीं है औलाद के हवाले से, वक्ती आजमाइश है। अल्लाह पाक नेक सवाले औलाद नरीना अता फरमाए। वजीफा आप नोट फरमा लें, हर नमाज के बाद 300 टाइम 300 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दूध पाक के साथ 300 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है हर नमाज के बाद। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो नेक सवाले औलाद नरीना नसीब होगी। इसी तरह एक और कॉल थी महमूद बिन जैनब बीबी के बारे में, कहा गया इनका कि माल एक जगह से उठाना है, रकम दे दी है पिछली और अगला माल नहीं मिल पा रहा, तो इस्तिखारा इसमें हमने ये देख लिया कि जो रुकावट आ रही है तो क्या कोई रूहानी मामला है या वैसे ही है, तो रूहानी मसला तो इसमें कोई भी नहीं है। वक्ती आजमाइश है, वजीफा नोट कर लें कि आपके काम में जो ये रुकावट आ रही है अल्लाह पाक इसमें आसानी फरमाए। हर नमाज के बाद 100 मरतबा या वल जलाली वल इकराम, या वल जलाली वल इकराम 100 मरतबा हर नमाज के बाद अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ ये अमल कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बेहतरी होगी।
अच्छा, ऐसा है कोई कोई खास अमल, कोई खास वजीफा, जैसे किसी से कोई माल लेना हो, अब पता है वो सामने वाला माल दे नहीं रहा, अब कोई ऐसा वजीफा हो पढ़कर भाई दम कर दिया जाए या कोई पढ़कर दुआ कर दी जाए वो माल दे दे सामने वाला?
वही कहते हैं ना कि ये अपनी ही चीज लेना चाह रहे हैं या तो खरीदारी करें, क्योंकि इस सूरत में जिसमें ये लेना चाह रहे हैं तो ये एक तरह से वादा कह लें या मुहैदा कह लें कि उनसे इनकी डील हुई हुई कि पिछली वाली रकम देंगे तो अगला सौदा में दूंगा, तो ये सिलसिला रहता है, तो इंशाल्लाह इस वजीफे के मुताबिक अमल करें। हाँ, अगर आपकी अपनी ही चीज है और किसी के पास रुक गई है और जो नहीं मिल पा रही है, यानी इसके बरक्स मामला होता कि आपने किसी को जो है वो सामान दिया था, अब रकम आपकी नहीं मिल पा रही है, तो जो है फिर आप इसके लिए वजीफा नोट कर लें, पढ़ सकते हैं।
इसका तो एक अमीर अहले सुन्नत दामत खातमुल आलिया ने भी अता फरमाया था, अगर जैसे किसी की कोई रकम फंस गई है, किसी को पैसे दिए,
जी,
अब वो पैसे देने का नाम ही नहीं ले रहा भाई, किसी
रकम
को
है या
कर्जा
माल
दिया,
है?
हाँ रकम है माल है, अब किसी को कर्जा दिया, अब वक्त पर दे तो दिया, अब वो अपने को जरूरत पड़ी तो वो पैसे नहीं लौटा रहा, तो अब इसके लिए आप एक काम, नमाज असर अदा करने के बाद आप क़िबला रू बैठ जाए, क़िबला रू बैठ कर या अल्लाह या रहमान या रहीम या अल्लाह या रहमान या रहीम कसरत के साथ पढ़ते रहे यहाँ तक कि ग़ुरूब आफ्ताब हो जाए। जैसे ही ग़ुरूब आफ्ताब का वक्त करीब हो, गिड़गिड़ाकर अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ कीजिए, अपने लिए भी कि अपना जायज़ हक मिल जाए, और उसके लिए भी दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक उसके लिए भी असबाब बना
नेकी
दे।
की तौफीक दे उसको
जी
फिर
जी अच्छा ये भी होता है ना, उसके पास रकम आएगी, उसके पास पैसे
सौकत।
आएंगे तो वो आपकी रकम लौटाएगा, अब उसके लिए भी दुआ करें, अल्लाह पाक उसके लिए भी असबाब बना दे। हम किसी के लिए दुआएं खैर करेंगे, हमारे लिए भी आसानियां पैदा होती चली जाएंगी, इसके मुताबिक अमल करें।
साजिदा परवीन, इनके बारे में बताया गया कि बीमार हैं काफी, इस्तखारा किया गया इनके साथ भी कोई ऐसा अमलियात या बंदिश वगैरह का मामला नहीं है। वजीफा नोट फरमा लें, या कबीरू 9 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़कर इन पर दम कर दिया जाए, या ये खुद अपने पर दम कर लें, इंशाल्लाह सेहत याबी शिफा याबी नसीब होगी। आखिर में कॉल थी हमारे मुनव्वर भाई की, इन्होंने कहा कि कारोबारी मसला है, काम की आजमाइश है, तो इस्तखारे का कहा इन्होंने, इस्तखारा किया गया। मुनव्वर भाई, आपके कारोबारी मामले में, काम में कोई भी ऐसा बंदिश वगैरह का मामला नहीं है, वक्त की आजमाइश है, अल्लाह पाक आसानियाँ अता फरमाए। आप वजीफा नोट फरमा दें, फजर की नमाज के बाद या वहाबू, या वहाबू फजर की नमाज के बाद 300 मरतबा रोजाना ये अमल कीजिए, रोजाना 300 मरतबा या वहाबू, या वहाबू पढ़िए, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कारोबारी मामले में आसानी नसीब होगी। इसके वजीफे के शुरू और आखिर में पाक भी पढ़ते रहिए, इंशाल्लाह इसकी बरकतें नसीब होगी।
सही, तो इसके मुताबिक अमल भी करना है। अच्छा यहाँ एक बात मैं अर्ज करता चलूँ कि देखें, एक बात याद रखिएगा, हकीकत हाल अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है, और ये मसला भी याद रखिएगा कि इस्तिखारे से यकीन इल्म हासिल नहीं होता। ये एक उन्होंने मैसेज किया है, इम्तियाज हुसैन और बिनते रसूला बीबी, ये बता रहे हैं 9 साल की एक बेटी है, फिर उसके बाद उम्मीद नहीं हुई, तो इस्तिखारा भी कीजिए और हुसूल औलाद के लिए कोई वजीफा भी बताइएगा। अच्छा इसी तरह ये एक और मैसेज है कि मेरी वालदा बीमार रहती हैं, और बीमारी की वजह से नींद की गोली के बगैर नींद नहीं आती, इसका कोई वजीफा बता दीजिए। वजीफा मैं अर्ज करता हूँ इस हवाले से, अच्छा इस्तिखारों के हवाले से मजीद मैसेज भी हैं। मेरा नाम मुबीन है और मेरी वालदा का नाम नसीम है, रिश्ते के लिए इस्तिखारा करवाना है, के रिश्ते नहीं आते, कोई वजीफा भी बताइए और दुआ भी कीजिएगा। अच्छा मेरा नाम फौजिया बीबी है और वालदा का नाम सलीम अख्तर है, मुझे शुगर भी है और कुछ और भी मजीद तकलीफें हैं जिस्मानी हवाले से, तो इस हवाले से इस्तिखारा करके बताइएगा। अच्छा इसी तरह ये एक और मैसेज है कि मेरा नाम समीना है और वालदा का नाम जुबैदा है, मेरी शादी का मसला है, शादी नहीं हो रही, उम्र 28 साल है, और इस्तिखारा भी कीजिए और कोई वजीफा भी बता दीजिएगा। इस्तिखारे नाज़रीन आपके किए जा रहे हैं, नोट कर लिए गए हैं आपके कमेंट्स और आपके मैसेज वगैरह भी। ये एक मैसेज आया था कि मेरी वालदा को नींद नहीं आती, बीमारी की वजह से काफ़ी बीमार रहती हैं, अल्लाह पाक आपकी वालिदा को शिफाए कामिला आजिला सेहत नाफिया अता फरमाए। देखिए अगर किसी को दर्द की वजह से, बीमारी की वजह से, तकलीफ की वजह से नींद ना आती हो, तो अब ऐसे मरीज के पास बैठकर कसरत के साथ ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ये पढ़ते रहें इंशाअल्लाहुल करीम मरीज को नींद आ जाएगी। अच्छा मरीज तो जाहिर सी बात है वो तकलीफ में है, वो आजमाइश में है, परेशानी में है, अब दर्द हो रहा है उसे जिस्म में, तकलीफ हो रही है, या किसी बीमारी में मुब्तला है, वो वैसे ही बेचैन है, अब अगर वो वजीफा ना पढ़ सके तो उसके सिरहाने बैठकर कोई भी घर का फर्द सिर्फ दिल ही दिल में आप पढ़ते रहें ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ये पढ़ते रहें आपके मरीज को इंशाअल्लाहुल करीम नींद आ जाएगी। अच्छा, इसमें इस चीज़ का भी एहतियात ये करनी है, इस चीज़ का ख्याल रखना है कि मरीज़ को आपकी आवाज़ ना जाए, इस चीज़ का ख्याल रखना है। आप इतनी आवाज़ के साथ पढ़ें कि आप के कान आपकी आवाज़ सुन सके। इस एहतियात के साथ कीजिएगा, इंशाअल्लाहुल करीम मरीज़ को नींद आ जाएगी। अच्छा, यहाँ एक बात मैं अर्ज करता चलूँ। अब जैसे आपने कहा कि वालदा बीमार हैं, नींद भी नहीं आती, यहाँ तक कि नींद की गोलियां भी इस्तेमाल करती हैं, नींद की गोलियां खाने के बावजूद भी नींद नहीं आती। यहाँ देखें, एक बात मैं अर्ज करता चलूँ कि नींद आवर गोलियों से हत्तल इम्कार दूर रहें, ये इस्तेमाल ना करें, ये जिस्मानी हवाले से, सेहत के हवाले से बहुत नुकसानदेह है। अच्छा, शुरू शुरू में फायदा होगा, नींद आ जाएगी, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से एक वक्त ऐसा आएगा कि आप चाहे जितनी ही नींद की गोलियां खा लें, आपको नींद नहीं आएगी, और फिर और भी बहुत सारी जिस्मानी हवाले से बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो इसे दूर रहें और दुआ करें अल्लाह पाक की बारगाह में कि अल्लाह पाक आराम वाली, राहत व सुकून वाली नींद अता फरमाएं। अच्छा, तो ये वजीफा भी पढ़ें। अच्छा, मरीज अगर खुद पढ़ना चाहता है, जैसे अगर उसको नींद नहीं आ रही, तो सूरत नबा की ये आयत मुबारक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वजअलना नौमकुम सुबाता, अव्वल वाखिर दुरूद पाक के साथ आप एक मरतबा यह आयत मुबारक पढ़ लें, इंशाअल्लाहुल करीम नींद आ जाएगी अल्लाह की रहमत से। एक मशवरा भी मैं देता चलूँ, इसका एक खास ताबीज भी होता है, जिसको नींद नहीं आती, तो आप रूहानी इलाज के बस्तों से इसका ताबीर हासिल कर सकते हैं। ये होता है बाद अवत, देखें जब मरीज बीमार होता है, कोई इस तरह परेशानी में है, तकलीफ में, नींदें उड़ जाती हैं, कुछ जिंदगी में इस तरह के मसाइल आ जाते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती हैं, अब रातों की नींद उड़ जाती है, नींद नहीं आती उसे, तो इसका आप दोनों वजीफे भी आपको बता दिए गए। तावीज़ के हवाले से मैं आपको मशवरा दूंगा कि दुनिया भर में माशाल्लाह रूहानी इलाज के बस्ते लगते हैं, आप ये ज़रूर तावीज़ हासिल कीजिएगा, और तकिए में रखने का ये खास तावीज़ होता है, इंशाअल्लाहुल करीम नींद आ जाएगी। आइए नाज़रीन, शामिल करते हैं आपके इस्तखारों के जवाब, जिन नाज़रीन ने कमेंट्स किए थे इस्तखारों के हवाले से, जवाब नोट कीजिए। जी इरशाद,
ये मैसेज था एक जिसमें बताया था कि औलाद नहीं है इम्तियाज हुसैन बिन रसूल अभी, इनका इस्तखारा किया गया, इस्तखारे में कोई ऐसा बंदिश वगैरह का मामला नहीं है, तो ये आजमाइश है, अल्लाह पाक आसानी फरमाए। वजीफा ये नोट फरमा लें, या अव्वलु 41 टाइम, या अव्वलु या अव्वलु या अव्वलु, ये रोजाना पढ़ने का मामूल बना लें। अव्वल आखिर दूध पाक भी पढ़ें, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो नेक औलाद नसीब होगी। 41 टाइम, 41 मरतबा ये पढ़ना है वजीफा। और इसी के साथ एक और मैसेज था मुबीन बित नसीमी भी, इसमें रिश्ते के हवाले से उन्होंने कहा, और एक और रिश्ते के हवाले से मैसेज था समीना बिनते जुबैदा भी, दोनों के रिश्तों के हवाले से इस्तखारा किया गया, तो रिश्ते के मामले में कोई भी बंदिश या रुकावट नहीं है। वजीफा ये नोट फरमा रहे, फजर की नमाज के बाद सूरह तीन जो है कुरान पाक की 30वें सिपारे की सूरत व तीन व जैतून, ये सूरत जो है 60 मरतबा 60 टाइम पढ़कर दुआ करें, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत शामिल हाल रही तो नेक सालेह रिश्ता नसीब होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ फजर की नमाज के बाद 60 मरतबा ये वजीफा पढ़ना है, और अल्लाह ने चाहा तो 40 दिन के अंदर अंदर रिश्ता नसीब होगा। इसके बाद एक और मैसेज था फौजिया बिनते सलीम अख्तर, जिन्होंने कुछ बीमारियों का भी जिक्र किया और कहा कि शुगर भी है, इनका इस्तखारा किया गया, इस्तखारा में कोई भी ऐसा अमलियात वगैरह का मामला नहीं है, बीमारी वगैरह का ही इशारा है। शुगर के हवाले से आप ये दुआ नोट फरमा लें, कुरान पाक के 15वें सिपारे की सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 80 है, रब्बी अदखिलनी मुदखला सिदकियों व अखरिजनी मुखरजा सिदकियों व जअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। ये दुआ पढ़ने का मामूल बनाइए, और ये दुआ सुबह शाम 3-3 मरतबा अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद पाक के साथ पढ़कर पानी पर दम करके ये पानी इनको पिलाएं, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सेहत याबी शिफा याबी नसीब होगी। 3 मरतबा दुआ पढ़नी है, 3 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ सुबह और शाम 2 टाइम पानी के ऊपर दम करें, और वो पानी जो शुगर का मरीज हो वो पी ले, इंशाअल्लाह इसको सेहत याबी नसीब।
शुगर के मरीजों के लिए वजीफा तो हो गया, वजीफा भी पढ़ते रहे, मीठा मीठा वो इस्तेमाल भी कर रहे हैं, मीठी मीठी चीजें भी खा रहे हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा शरबत भी पी रहे हैं।
एहतियात तो पहले ही शुरू में हमने, हमारा जो आज मौजू चला गुफ्तगू हुई इब्तदान, के वजायफ तो पढ़ने हैं लेकिन उसकी शराइत भी देखी, शायद इस वजीफे की शराइत में ये भी जरूर रहेगा, क्योंकि ये तो एहतियात है, जिसको शुगर का मर्ज है तो अपने मर्ज की कैफियत के मुताबिक जिस तरह से डॉक्टर ने इसको कहा है उसके मुताबिक इसका चलना जरूरी है। यहाँ से वजीफा पढ़ता रहे, वहां से दवाई भी खाता रहे और साथ में शुगर बम जो है यानी मीठी चीजें भी खाता रहे, यकीनी तौर पर इसे नुकसान ही होगा, फायदा तो नहीं पहुंच सकेगा,
सही
वो एहतियात जो है
सही
करनी ही करनी।
माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये जो आपको नाज़रीन वजीफा बताया गया शुगर का रूहानी इलाज भी, रूहानी इलाज के बस्तों से भी माशाल्लाह आपको प्रिंट शुदा ये वजीफा ये पर्चा आपको मिल जाएगा। अगर आसानी हो आपको तो रूहानी इलाज के बस्तों से भी हासिल कर सकते। नाज़रीन जिनके इस्तखारे किए गए अब वो तवज्जो फरमाए, थोड़ा तवज्जो रखिएगा। वो ये देखें जिनके इस्तखारे किए गए, हकीकत हाल अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है। और ये मसला भी याद रखिएगा कि इस्तिखारे से यकीन इल्म हासिल नहीं होता। मैसेज आया बड़ा दिल पे लगने वाला ये मैसेज है। अब मैंने ये मैसेज पढ़ा ना तो बस यूं समझिए कि कैफियत थोड़ी सी चेंज हो गई। अल्लाह पाक आसानी फरमाए।
अमीन
अब
अमीन
दुनिया भर में कैसे कैसे तकालीफें हैं, कैसी कैसी आजमाइशें हैं। हमें नाजरीन देखें एक बात याद रखें, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह
बेशक
तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरा करोड़ हाँ करोड़ है सारे, तूने हमें हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों लोगों से बेहतर बनाया है।
बेशक
और कितनी सारी आजमाइशों से मौला तूने हमें महफूज रखा है। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए, वरना दुनिया में हमसे ज्यादा परेशान हाल, हमसे ज्यादा आजमाइशों में, हमसे ज्यादा तकलीफों में और हमसे ज्यादा जहनी उलझनों में लोग मुब्तला है। हर हाल में हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहना चाहिए और हर हाल में अल्लाह की रजा पर राजी रहें। या अल्लाह मैं तेरी रजा पर राजी हूँ, या
बेशक
अल्लाह तेरा शुक्र है मौला, हर हाल में बस तेरा शुक्र है। हमेशा अपने से कम तर वाले को देखना चाहिए, इंशाअल्लाहुल करीम सब्र करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। वो मैसेज नाज़रीन में पढ़ता हूँ और फिर इसका रूहानी इलाज मैं अर्ज करता हूँ। इन्होंने मैसेज किया है कि शौहर के इंतकाल के बाद ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया है और मुझ पर केस कर दिया है, ना मुझे हिस्सा दिया है और झूठ बोल कर मुझसे साइन वगैरह भी करवा लिए हैं, मुझ पर केस कर दिया है और मेरा जो हक था मुझे नहीं लुटाया गया। मेरी दो छोटी बेटियां हैं और तो इस तरह के मामलात इन्होंने जिक्र किए हैं और कहा है कि मैं अपने मेके में हूँ, अपनी वालदा के घर पर हूँ, बहुत परेशान हूँ, जहनी उलझन में हूँ और दुआ भी फरमा दें और कोई वजीफा भी बता। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात को दूर फरमाए, आसान फरमाए और आपके गमों को खुशियों में तब्दील फरमा दे। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात को आसानियों में तब्दील फरमाए। जो आपका मसला है तो इसके लिए एक वजीफा है, ये नोट कीजिएगा। कुरान पाक की आयत है, सूरह बनी इसराइल की ये आयत मुबारक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकुल जा अल हक वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक। ये आयत मुबारक ये पढ़ेंगे आप 133 मरतबा, 133 टाइम, सही है 133 बार ये पढ़ें। पढ़कर आप गिड़गिड़ाकर अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ कीजिए और गिड़गिड़ाकर हुजूरे दिल के साथ यकीन कामिल के साथ दुआ कीजिएगा, इंशाअल्लाहुल करीम आपको अपना हक मिल जाएगा। और जो भी आपकी परेशानी है, जो आपका केस कर दिया गया है, उससे भी इंशाअल्लाहुल करीम खुलासी मिल जाएगी। ये वजीफा ऐसा है नाजरीन, अगर कोई नाजायज मुकदमात में घिर चुका हो, नाजायज किसी पर कोई मुकदमा आ चुका हो और वो चाहता है कि मैं इससे बरी जिम्मा हो जाऊं, निकल जाऊं खैर के साथ, आफियत और सलामती के साथ, रोजाना आपने किसी भी एक नमाज के बाद, कोई भी नमाज अपने लिए मखसूस कर लें, उस नमाज के बाद 133 बार ये आयत मुबारक पढ़ें, वकुल जा अल हक व जहक अल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका, ये वजीफा कीजिएगा, इंशाअल्लाहुल करीम उस मुकदमे से आप निकल आएंगे। मगर याद रखिए कि अगर आप हक पर हो ना, अगर आप हक पर हो तो फिर ये वजीफा कीजिएगा कि ना हक पढ़ने वाला ये अर्ज खुद मुसीबत में गिरफ्तार हो सकता है।
अल्लाह
ठीक, अब ऐसा ना हो कि किसी के साथ नाजायज किया है तो आपने ये वजीफा पढ़ना शुरू कर दिया तो खुद आजमाइश में मुब्तला हो सकते हैं। अगर आप हक पर हैं और फिर आपके साथ कोई गलत करता है और फिर आप ये वजीफा कीजिए, इंशाअल्लाह करीम इन मुकदमा से रिहाई नसीब होगी।
मैसेज जो आपने पढ़ के बताया, वजीफा भी बताया, जैसे बताया इनकी तसल्ली का सामान हुआ, लेकिन जिसने यूं किया उसके लिए लम्हा फिक्रिया है कि हमारे लिए हम ऐसा अमल करें, ऐसा काम करें कि लोग हमारे लिए हाथ उठाकर दुआ करें, हम लोगों के साथ अच्छाई से पेश आए, नेकी से, उसने सलूक से पेश आए, उनके साथ भलाई करें कि लोग हमारे लिए अच्छा गुमान रखें और अच्छा पेश आए। कितना बड़ा बदनसीब है वो शख्स के जो इस तरह का अमल करे कि उसके साथ अच्छा गुमान रखना तो दूर की बात, उसके लिए लोग जो है बुरा गुमान दिल में रखें। कहीं ऐसा ना हो कि किसी की बददुआ जो है इनको बहुत जो है आजमाइश में मुब्तला ना करे।
अल्लाह पाक आजमाइशों से हम सबको महफूज फरमाए। खैरुन नासी मन यनफाउन नास, लोगों में से बेहतर वो है कि जो दूसरों को नफा पहुंचाए, दूसरों को नफा पहुंचाने वाले बन जाए। इंशाअल्लाहुल करीम हमारे लिए राहें खुलती चली जाएंगी। दुनिया भर में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल रूहानी इलाज के बस्ते लगते हैं, जहां मेरे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातहुम अलिया के तावीरात दिए जाते हैं, और दुनिया भर में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल लोग मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं, लोगों के मसाइल हल होते हैं, शिफा याब हो जाते हैं। और वक्तन फवक्तन नासरीन को सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल ये मदनी बहारे, ये रूह परवर वाकयात अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल हम दिखाते भी रहते हैं। आइए एक मदनी बहार है नासरीन को दिखाते हैं। जी चलाइएगा। कौन?
मैं सारी नवाजी से मेरे पापा को मुंबई में पथरी थी, इस रिपोर्ट में पथरी का आया है। पथरी की जेल मेरे वाले पड़ोसी मंदिर में रोहानी इलाज के लिए गए, तो उन्होंने अमीरा लक्ष्मण में तावीजा की सभी लीला किए। मैं बीमार हमें केवल लाइन पढ़ने को कहा तो अल्हम्दुलिल्लाह पथरी निकल गई।
माशाल्लाह, ये मेरे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत दामत फातिमा आलिया का ये रिसाला था। आपने देखा था इस मदनी मुन्ने के हाथ में बीमार आबिद, तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल अमीर अहले सुन्नत ने वजीफा भी अता फरमाया है और तावीदात भी माशाल्लाह इनके वाली साहिब ने इस्तेमाल किया। वाली साहिब का बता रहे थे ना कि वाली साहिब
वाली साहब ने
पथरी थी गुर्दे में, तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल पथरी भी निकल गई। तावीदात अतारिया के बस्तों पर अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल इसके खास तावीदात भी दिए जाते हैं। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल एक वजीफा भी बयान किया है अमीर अहले सुन्नत ने पथरी का रूहानी इलाज, के अगर किसी के गुर्दे में पथरी हो ना तो 7 मरतबा सूरह अलम नशरह ये पढ़कर पानी पे दम करके पी ले तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल वो पथरी निकल जाएगी, वो पथरी रेजा रेजा होकर निकल जाएगी। तो ये वजीफा भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल मेरे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत दामत कातमुल आलिया ने अता फरमाया। अगर आप में से भी नासरीन अगर किसी के अल्लाह ना करे गुर्दे खराब हों, गुर्दे में पथरी हो चुकी हो, तो आप भी ये वजीफा पढ़ सकते हैं। और
इसी पथरी वाले वजीफे में अमीर अहले सुन्नत ने पित्ते और मसाने, क्योंकि अक्सर मसाने में भी पथरी का होता है, तो पित्ते और मसाने की पथरी का एक और वजीफा जो यहाँ अमल इरशाद फरमाया है कि ला इलाहा इल्लल्लाहु 46 टाइम, 46 टाइम ये एक सादे कागज के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह लिख कर पानी में इसको डालकर इसका पानी पिलाया जाए मरीज को, तो इंशाल्लाह पित्ते में या मसाने में पथरी हुई अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ये पथरी रेजा रेजा होकर निकल जाएगी। 46 टाइम 46 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह एक सादे कागज के ऊपर लिखना है, फिर इस लिखे हुई तहरीर को आप पानी में डाल दें और इसका पानी पिलाएं मरीज को, इंशाल्लाह अल्लाह की
आबे जमजम शरीफ में भी डाल सकते हैं।
जब आम पानी का है तो फिर आबे जमजम तो खास बरकत है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वैसे बरकत वाला पानी।
सही। अच्छा, अब गुर्दे में अगर पथरी है तो उसका अलग रूहानी इलाज है, ये ते और
मसाने की
में अगर पथरी है तो इसका वजीफा आपने ये माशाल्लाह बताया है। अच्छा आइए नाजरीन, कुछ आपके सवालात भी हैं हमारे पास, वो शामिल करते हैं कि नाजरीन क्या मालूम कर रहे हैं। जी वीडियो सवालात।
मेरा नाम अहमद सईद है। सिलसिला रूहानी इलाज में मेरा सवाल ये है कि बच्चों को नेक बनाने के लिए कोई वजीफा बता दें, और मेरा दूसरा सवाल ये है कि किन किन बातों के लिए इस्तखारा करवाना चाहिए,
किन किन बातों के लिए इस्तखारा करवाना चाहिए। पहले तो बच्चों को नेक बनाने का रूहानी इलाज मैं अर्ज कर देता हूँ। देखिए, एक है वजीफा, एक है तरबियत। वजीफा भी पढ़ें और बच्चों की अच्छी तरबियत भी करें, अच्छा माहौल बच्चों को फराहम करें। बच्चों की अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे अच्छी तरबियत होगी और अच्छा माहौल मिलेगा तो इंशाअल्लाह करीम बच्चे नेक बन जाएंगे। मैं वजीफा पहले अर्ज कर देता हूँ। वजीफा देखें, बच्चों को नेक बनाने का यह है कि जब बच्चे सो जाएं तो उनके सिराने खड़े होकर एक मरतबा सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ इतनी आवाज के साथ पढ़ें कि बच्चों की आंख ना खुले। इसे तकरीबन आप 3 फिट के फासले पर खड़े हो जाएं और सूरतुल इखलास पढ़ लें जब बच्चे सो जाएं, तो इंशाअल्लाह करीम बच्चे नेक बनेंगे। अच्छा, और दूसरा मैं ये अर्ज कर रहा था कि अच्छी तरबियत सोहबत यह असर रखती है। बच्चों को अच्छी तरबियत दें, अच्छी सोहबत दें, अच्छा माहौल फराहम करें और बच्चों को अपना किड्स मदनी चैनल ये दिखाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल आपका अपना मदनी चैनल ये इलेक्ट्रॉनिक मुबल्लिग ये अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल हमारे बच्चों की तरबियत करेगा। नियत करें कि इंशाल्लाह करीम अपने घरों में मदनी चैनल ऑन करेंगे, बच्चों को भी दिखाएंगे, खुद भी देखेंगे, और सबसे बढ़कर यह कि अमीर अहले सुन्नत दामत मुकातमुल आलिया की सोहबत में दे दें अपने बच्चों को। हर हफ्ते मदनी मुलाकरा होता है अल्हम्दुलिल्लाह सवजल, अपने बच्चों को भी बिठाएं, खुद भी बैठें, देखें, सुने, सीख कर अमल करने की कोशिश करें। आपकी जिंदगी में तब्दीली ना आए तो फिर कहना, आपके बच्चों की अच्छी तरबियत ना हो तो फिर कहना। अल्हम्दुलिल्लाह सवजल वली कामिल के अल्फाज ये तासीर का तीर बनकर दिल के मदनी गुलदस्ते में ये पेवस्त हो जाएंगे इंशाअल्लाह करीम। आइए नाजरीन शामिल करते हैं आपके कॉल्स, देखते हैं कि नाजरीन क्या रूहानी इलाज जानना चाह रहे हैं और अपने किन मामलात के बारे में इस्तिखारे करवाना चाह रहे हैं। जी कॉल चलाइए।
मेरे स्पेयर पास की गांठ है तो ईमानदारी सही तरह चाल नहीं रही, मैं पैसे लेता हूँ काम करने के लिए, काम चलता नहीं है, ऊपर से मकरूज होता जा रहा हूँ।
दुकान नहीं चल रही और कारोबारी मामला डिस्टर्ब हैं, मकरूज भी हैं, अल्लाह पाक आसानी फरमाए। वजीफा भी इस हवाले से आपको बताते हैं। जी नेक्स्ट कॉल।
मेरा नाम खान मोहम्मद और मेरी वालदा का नाम जोरा बीबी है और मेरा इस्तखारा भी करें और मुझे 3 साल हो गए माजूर की आदत में पड़ा हूँ, बेड सोल हो गए, इसका कोई रूहानी इलाज मेहरबानी करके बताए। जजाकल्ला।
अल्लाह पाक आपको शिफा अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती रहे, बड़ी आजमाइश होती है बेड सोल हो जाए ना किसी को, अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए, हिम्मत रखें, हौसला रखें, अल्लाह बेहतर फरमाने वाला है, अल्लाह पाक शिफा देने वाला है। इस्तिखारा भी करवाते हैं, खान मोहम्मद नाम आपने बताया और वजीफा भी इंशाल्लाह अभी आपको बताएंगे। जी नेक्स्ट कॉल।
मेरा बेटा है वो चल नहीं सकता, 1 साल उम्र है,
चल नहीं सकता, अल्लाह पाक आसानी फरमाए, अभी वजीफा बताते हैं। जी नेक्स्ट कॉल।
सुहेल अहमद बात कर रहा हूँ शाहरा से, मेरी वालदा का नाम खालदा परवीन है। कोई भी कारोबार करता हूँ ना तो मेरा कारोबार नहीं चलता है, कोई ना कोई मेरे ऊपर लौट के नीचे कोई ना कोई मुसीबत पड़ी रहती है, तो मेरा इस्तखारा क्या, बहुत शुक्रिया।
जी नेक्स्ट कॉल।
उस्मान बात कर रहा हूँ, मैंने अपने भाई का इस्तखारा कराना है, उसका नाम मुजम्मल हुसैन है और वालदा का नाम जुबैदा बीबी है ना, तो इस सिलसिला ये था कि उसकी मतलब रिश्ता कर रहे हैं लेकिन कहीं हो नहीं रहा है, 3-4 साल हो गया ढूंढ रहे हैं।
सही है, रिश्ते में रुकावटें हैं। ये चंद एक मैसेज भी ये शामिल कीजिएगा, ये इस्तिखारा करवाना है, जब भी कोई रिश्ता आता है हाँ भी हो जाती है फिर लड़के वाले कहीं और कर देते हैं, मना कर देते हैं, क्या बात है, और इस्तिखारा भी कीजिएगा। वालदा का नाम है साहिर बीबी और मेरा नाम है महवेश, इनका भी इस्तिखारा कीजिएगा। इसी तरह एक और ये मैसेज है कि लड़के का नाम उस्मान अली है, वालदा का नाम साइमा बीबी है, अच्छा उसके बाहर जाने का कोई काम नहीं हो रहा, 2 साल हो गए हैं, बैरून मुल्क जाना चाहते हैं लेकिन कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, इनका भी इस्तिखारा कीजिए। आप इस्तिखारे फरमा लीजिए फिर सबके जवाब इंशाअल्लाह करीम आपसे मालूम करेंगे। ये हमारे एक इस्लामी भाई थे, स्पेयर पार्ट्स की इनकी दुकान है और बताया कि दुकान नहीं चल रही, कारोबार नहीं चल रहा और मैं मकरूज होता जा रहा हूँ, अल्लाह पाक आफियत वाला मामला फरमाए, आपके रिस्क हलाल में बरकतें अता फरमाए। कर्जे से नजात के लिए एक वजीफा है जो आपने 11 दिन तक ये अमल करना है, बिला नागा आप ये अमल कीजिएगा और ये अमल आप करेंगे सुबह सादिक के बाद से लेकर सूरज निकलने से पहले पहले तक, यानी जैसे ही फजर का वक्त शुरू हो उस वक्त से लेकर फजर का वक्त खत्म होने से पहले पहले आपने ये वजीफा मुकम्मल करना है। या मुजीबु या अल्लाह, या मुजीबु या अल्लाह, या मुजीबु या अल्लाह, 313 मरतबा आप ये पढ़ें, पढ़कर आप अल्लाह पाक की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह करीम कर्ज की अदायगी के अस्बाब बन जाएंगे। ये अमल 11 दिन का है, 11 दिन तक मुसलसल जारी रखिएगा, कोशिश कीजिए कोई दिन नागा ना हो, अगर बिल्फर नागा हो जाए तो फिर दोबारा नए सिरे से यह अमल शुरू कीजिएगा। बस 11 दिन आपने पाबंदी के साथ यह अमल करना है, इंशाअल्लाह करीम रिस्क में भी बरकत रहेगी, आपके काम में भी बरकत रहेगी और आपका कर्जा भी उतर जाएगा। ये एक और इस्लामी भाई थे, आपने बेटे के हवाले से कहा था कि चल नहीं सकता, अल्लाह पाक आपके बेटे को हिम्मत ताकत कुव्वत नसीब फरमाए, आपका बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो, चलना शुरू कर दे। आप आयत करीमा पढ़ें, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन, यह आयत करीमा पढ़कर आप अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह करीम अल्लाह की रहमत से आपका बेटा चलना शुरू कर देगा और रूहानी इलाज के बस्तों से अपने बेटे की सेहत याबी के लिए, शिफा याबी के लिए आप तावीलात अत्तारिया जरूर हासिल कीजिएगा, इंशाअल्लाह करीम आपका बेटा पैरों पर खड़ा होगा, चलना शुरू कर देगा, दौड़ेगा और इंशाअल्लाह करीम जानिब मदीना, अल्लाह पाक असबाब बनाए तो जानिब मदीना रवाना होंगे इंशाअल्लाह करीम। تو آپ نے یہ پڑھنا ہے آیت کریمہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ سورۃ الانبیاء کی یہ آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 87 اور پارہ نمبر 17. یہ پڑھ کر دعا کیجئے گا. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی مسلمان ان کلمات کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ پاک اس کی دعا قبول فرماتا ہے. اور یہ وہ کلمات ہیں کہ جو حضرت سیدنا یونس علی نبینا وآلہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ کلمات کہے، یہ دعا کی تھی اللہ پاک کی بارگاہ میں. اللہ پاک نے آپ کو مچھلی کے پیٹ سے 3 تاریکیوں سے نجات عطا فرمائی. تو آپ بھی یہ دعا کریں اپنے بیٹے کی شفا یابی کے لیے، دیکھیں انشاءاللہ الکریم برکتیں حاصل ہوں گی. آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات. جی ارشاد فرمائیں.
خان محمد بھائی تھے، انہوں نے استخارہ کا کہا کہ معذوری کی کیفیت ہے، طبیعت ناساز ہے، استخارہ کیا گیا. خان محمد بھائی آپ کا کوئی ایسا ڈش وغیرہ کا، امتیاز وغیرہ کا مسئلہ تو نہیں ہے، اللہ پاک صحت و شفا نصیب کرے. آپ وظیفہ یہ نوٹ فرما لیں، یا سلام یا سلام، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کو پڑھتے رہیں، اور روزانہ 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر اپنے اوپر آپ خود دم کر لیں، یا کوئی اور آپ کے اوپر پڑھ کر دم کر دے. یا سلام، اور 111 مرتبہ جب پڑھنا ہے تو اول و آخر درود پاک بھی ساتھ میں پڑھ لیں، اور چلتے پھرتے بھی جب یا سلام پڑھتے رہیں، کبھی یا سلام کبھی درود پاک کا ورد کرتے رہیں، اللہ پاک صحت و شفا نصیب کرے. سہیل احمد بھائی تھے، انہوں نے کام کا کہا کہ کام کے معاملے میں رکاوٹ ہے، آزمائش ہے، استخارہ کروانا چاہے کہ کیا کوئی بندش وغیرہ کا معاملہ ہے یا نہیں ہے. سہیل بھائی آپ کے کام کے حوالے سے استخارہ کیا گیا، کوئی بھی ایسا بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، اللہ پاک خیر فرمائے، خیر والا معاملہ فرمائے. آپ وظیفہ یہ نوٹ فرما دیں کام کے حوالے سے، یا ول جلالی ول اکرام، ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ یا باسط، یہ دونوں پڑھنے کا معمول بنا لیجیے، ان شاء اللہ نے چاہا تو برکتیں نصیب ہوں گی. اس کے بعد دو اور میسیجز تھے جن کا مسئلہ سیم تھا. ایک تو منور حسین، دو کالز تھیں جن کا دونوں کا سملر مسئلہ. منور حسین ان کے رشتے کے استخاری کے لیے کہا گیا، اور ایک اور تھا مہوش بنت ہوا، ان کا میسج تھا شاید آپ کا کہ رشتے کی بات چلتی ہے لیکن بات ختم ہو جاتی ہے. بہرحال دونوں کا استخارہ کیا گیا، رشتے کے معاملے میں کوئی بھی بندش وغیرہ تو نہیں ہے، وقتی آزمائش ہے. وظیفہ ان کے لیے یہ عرض ہے کہ فجر کی نماز کے بعد یا ول جلالی ول اکرام 312 ٹائم، 312 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ یہ دعا پڑھیں، یہ وظیفہ کریں، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں نیک رشتہ ملنے کی دعا مانگے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ نیک رشتہ بھی ملے گا، اور جلد جو ہے وہ رشتہ ازدواج میں داخل ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور استخارے کا تھا ہمارے عثمان بھائی کے حوالے سے، عثمان علی بن سائمہ بی بی کے، بیرون ملک سفر کرنا چاہ رہے ہیں کافی عرصے سے، انہوں نے کہا کہ یہ کوشش کر رہے ہیں لیکن کام نہیں بن پا رہا ہے، تو استخارہ بھی کروانا چاہ اور وظیفے کا بھی پوچھا ہے. دوبارہ استخارہ تو کیا گیا، اس پہ کوئی ایسی بندش وغیرہ کا معاملہ تو نہیں ہے. وظیفہ آپ یہ نوٹ فرما دیں، 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، غیر مقروء وقت میں یہ نفل پڑھنے ہیں، اور نفل پڑھنے کے بعد سلام پھیریں، اور سلام جب پھیر لیں 2 رکعت پڑھنے کے بعد، پھر یا لطیف یا لطیف یا لطیف 182 مرتبہ 182 ٹائم اول و آخر درود پاک کے ساتھ یہ پڑھیں، اور پھر جائز اور آسان ملازمت بیرون ملک جو سفر ہے اس کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو دعا قبول ہوگی، اور جو سفر کے معاملے میں آزمائشیں ہیں، مشکلات ہیں، اللہ پاک اس میں آسانی عطا فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل.
صحیح، اللہ پاک آسانی فرمائے، ہم سب کو برکتیں نصیب فرمائیے. ایک میسج میں آخری شامل کر لیتا ہوں کیونکہ وقت اختتام کی جانب ہے. یہ علی رضا نام ہے ان کا، اب انہوں نے میسج کیا ہے کہ جہاں میں جاب کرتا تھا وہاں سے مجھے نکال دیا گیا ہے، اور بغیر کسی وجہ کے نکالا ہے، اور ایک جھوٹا الزام لگا کے نکال دیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ مجھے وہ واپس بلا لیں یا کہیں اور اسباب. اب اس طرح کے بڑے آزمائش آ جاتی ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے، ہمت رکھیں، دل برداشتہ نہ ہو. بعض اوقات لوگ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، اور امیدیں یوں سمجھیے کہ اپنے بالکل ہار جاتے ہیں. اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اپنے حوصلے بلند رکھیں، یہ آزمائشیں ہوتی ہیں نا، اور یہ آدمی کو حوصلے بلند کرنے کے لیے آزمائشیں آتی، درجات بھی بلند ہوتے ہیں. بہرحال میں وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، جو آزمائش جو پریشانی ابھی فی الوقت آپ کے ساتھ ہے نا کہ جاب سے نکال دیا گیا، آپ چاہتے ہیں کہ یا تو مجھے واپس بلا لیں، اور جو مجھ پر جھوٹا الزام لگایا گیا ہے وہ میں اس میں بالکل واضح ہو جاؤں نا، یعنی مجھ پر یہ غلط ثابت ہو الزام، تو دونوں کے لیے ہی میں وظیفہ عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں ایک تو یہ کہ یا قادرو آپ پڑھیں 41 مرتبہ، یہ جو مشکل ہے آپ کی انشاءاللہ الکریم یہ مشکل دور ہو جائے گی. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ چاہتے ہوں کہ یہ الزام یہ غلط ثابت ہو جائے اور لوگوں کے دلوں میں میری محبت پیدا ہو، تو آپ صبح کے وقت آپ پڑھیں گے یا قیوم یا قیوم یا قیوم، صبح کے وقت یعنی سورج نکلنے سے پہلے پہلے آپ یہ کثرت کے ساتھ پڑھیں یا قیوم یا قیوم یا قیوم. جو کثرت کے ساتھ پڑھے اس کا تصرف یہ لوگوں پر ظاہر ہوگا، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جائے گی اور لوگ اس کو دوست رکھیں. اس وظیفے کی تاثیر، یہ وظیفہ پڑھیں انشاءاللہ الکریم برکتیں حاصل ہوں گی اور آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، آپ کی پریشانی دور ہوگی. اللہ پاک ہم سب کی آجری کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ پاک پیاری حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کریں.
امین.
یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، قرض کی ادائیگی کے غیب سے اسباب بنا دے. یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما، محتاجی سے بچا لے، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا لے. یا اللہ پاک بے گھروں کو گھر عطا فرما. یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، اپنی میسجز کیے، اپنی بیماریوں کا پریشانیوں کا بتایا، یا اللہ پاک تو ہی شفا دینے والا ہے، تو ہی پریشانیاں دور فرمانے والا ہے. یا اللہ پاک سب کی بیماریاں پریشانیاں آزمائشیں تکلیفیں دکھ درد غم رنج سب دور فرما دے، سب پر اپنا رحم و کرم فرما دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. آمین آمین آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
مشکلوں میں میرے خدا میری، ہر قدم پر